नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है।
भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%।
नई दिल्ली में कल शाम पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुश्री सुजाता शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा अब हरमोज जल डमरू के बाहर से आ रहा है। भारत ने आपूर्ति में मौजूदा बाधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का स्वागत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय भागीदार है। भारत ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सहायता बढ़ा दी है। लेबनान और कतर से सैकड़ों भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लाया गया है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार 177 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था कल उनके नियोक्ता द्वारा आयोजित चार्टर उड़ान से नई दिल्ली वापस लाया गया। बेरूत रफीक हरेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने समूह को विदाई दी। इस बीच कतर स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कतर में फंसे 500 से अधिक भारतीय कल कतर एयरवेज की उड़ानों भारत पहुंचे। यात्री नई दिल्ली और मुंबई सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हुए। दूतावास ने आगे बताया कि कतर एयरवेज आज भारत के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने वाली है, एक नई दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए, ताकि आगे की यात्रा सुगम हो सके। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। कल लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। सदन में वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशकों के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए एक खेदजनक है।
स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते। हुआ विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की। अबुधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबुधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। जिससे पहले 11 मार्च को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक सहित 4 लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से खाड़ी देशों पर हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। परिषद का कहना है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये प्रस्ताव 13 मतों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि 2 देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर कल रात एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल बाल बच गए। शादी समारोह से बाहर निकलते समय पीछे से एक हमलावर ने उन पर गोली चलाई। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी भी वहां मौजूद थे। आरोपी की पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुराना मंडी का निवासी और अजीत सिंह का पुत्र है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल भारी बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।